ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
तृतीय अंक, प्रथम दृश्य, शिप्रा तट। प्रपंच बुद्धि ने कहा, सब विफल हुआ। इस दुरात्मा स्कंदगुप्त ने मेरी आशाओं के भंडार पर अर्गला लगा दी। कुसुमपुर में पुरगुप्त और अनंत देवी अपने विडंबना के दिन बिता रहे हैं। भटारक भी बंदी हुआ, उसके प्राणों की रक्षा नहीं। क्रूर कर्मों की अवतारणा से भी एक बार सधर्म के उठाने की आकांक्षा थी, परंतु वह दूर गया। उग्र तारा की साधना से विकट से भी विकट कार्य सिद्ध होते हैं, तो फिर इस महाकाल के महाश्मशान से बढ़कर कौन उपयुक्त स्थान होगा। चलूं, वो वहां से जाना चाहता था, तभी भटार का प्रवेश हुआ। भटार ने कहा, भिक्षु शिरोमणे प्रणाम। कौन? भटारक? अरे, मैं स्वप्न देख रहा हूं क्या? प्रपंच बुद्धि ने कहा, नहीं आर्य, मैं जीवित हूं। उसने तुम्हें सूली पर नहीं चढ़ाया? नहीं, उससे बढ़कर। क्या? प्रपंच बुद्धि ने पूछा। मुझे अपमानित करके क्षमा किया, मेरी वीरता पर एक दुर्वह उपकार का बोझ लाद दिया। भटार वफ ने कहा, तुम मूर्ख हो, शत्रु से बदला लेने का उपाय करना चाहिए, ना कि उसके उपकारों का स्मरण। मैं इतना नीच नहीं हूं, भटार वफ ने कहा, परंतु मैं तुम्हारी प्रवृत्ति जानता हूं, तुम इतने उच्च भी नहीं हो। चलो एकांत में बात करें, कोई आता है। ये कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी विजया का प्रवेश होता है। विजया ने कहा, मैं कहाँ जाऊं? उस उच्च श्रृंखल वीर को मैं लोहन श्रृंखला पहना सकूंगी? उसे अपने बाहुपाश में जकड़ सकूंगी? हृदय के विकल मनोरथ, आह! वो गाती हुई आगे कहती है, उमड़ कर चली भिगोने आज, तुम्हारा निश्चल आंचल छोर, नयन जल धारा रे प्रतिकूल, देख ले तू फिर कर इस ओर, हृदय की अंतरतम मुस्कान, कल्पना में तेरा है विश्व, लालिमा में लय हो लवलीन, निरखते इन आंखों की ओर, यह कौन ओ राजकुमारी। तभी देवसेना का प्रवेश होता है। वो कहती है, विजया, सायंकाल का दृश्य देखने शिप्रा तट पर तुम भी गई हो? हाँ राजकुमारी, विजया ने कहते हुए सिर झुका लिया। विजया, अच्छा हुआ तुमसे भेंट हो गई, मुझे कुछ पूछना था। पूछना क्या है? विजया ने पूछा। क्या जो तुमने किया है उसे सोच समझकर किया? कहीं तुम्हारे दंभ ने तुमको छल तो नहीं लिया? तीव्र मनोवृत्ति के कशाघात ने तुम्हें विपथ गामिनी तो नहीं बना दिया? देवसेना ने पूछा। राजकुमारी, मैं अनुग्रहित हूं, उस कृपा को नहीं भूल सकती जो आपने दिखाई है, परंतु अब और प्रश्न करके मुझे उत्तेजित करना ठीक नहीं। विजया की यह बात सुनकर देवसेना ने आश्चर्य से कहा, क्यों विजया, मेरे सखी जनोचित सरल प्रश्नों में भी तुम्हें व्यंग सुनाई पड़ता है? यह सुनकर विजया ने कहा, क्या इसमें भी प्रमाण की आवश्यकता है? राजकुमारी, आज से मेरी ओर देखना मत, मुझे कृत्या अभिशाप की ज्वाला समझना, और ठहरो, दम ले लो। देवसेना ने कहा, संदेह के गर्त में गिरने के पहले विवेक का अवलंबन ले लो विजया। ये सुनकर विजया ने कहा, हताश जीवन कितना भयानक होता है यह नहीं जानती हो? उस दिन जिस तीखी छुरी को न रखने के लिए मेरी हंसी उड़ाई जा रही थी, मैं समझती हूं कि उसे रख लेना मेरे लिए आवश्यक था। राजकुमारी, मुझे न छेड़ना, मैं तुम्हारी शत्रु हूं, उसने क्रोध दिखाते हुए कहा। देवसेना ने तभी आश्चर्य से पूछा, क्या कह रही हो? वही जो तुम सुन रही हो, विजया ने कहा। वह तो जैसे उन्मत्त का प्रलाप था, अकस्मात स्वप्न देखकर जग जाने वाले प्राणी की कुतूहल गाथा थी। विजया, क्या मैंने तुम्हारे सुख में बाधा दी? मैंने तो तुम्हारे मार्ग को स्वच्छ करने के सिवा रोड़े ना बिछाए। ये सुनकर विजया ने कहा, उपकारों की ओट में मेरे स्वर्ग को छिपा दिया, मेरी कामना लता को समूल उखाड़ कर कुचल दिया। देवसेना बोली, शीघ्रता करने वाली स्त्री, अपनी असावधानी का दोष दूसरे पर ना फेंक। देवसेना मूल्य देकर प्रणय नहीं लेना चाहती है। अच्छा, इससे क्या? ये कह के देवसेना वहां से जाती है। जाती हो परंतु सावधान, विजया ने कहा। तभी भटार्क और प्रपंच बुद्धि का प्रवेश होता है। भटार्क बोला, विजया तुम कब आई हो? अभी अभी, तुम्ही को तो खोज रही थी। फिर प्रपंच बुद्धि की ओर देखकर उसने कहा, आप कौन हैं? भटार वफ बोला, योगाचार संघ के प्रधान श्रमण आर्य प्रपंच बुद्धि। ये सुनकर विजया नमस्कार करती है। तभी प्रपंच बुद्धि कहता है, कल्याण हो देवी, भटार्क से तो तुम परिचित सी हो, परंतु मुझे जान जाओगी। विजया ने कहा, आर्य, आपके अनुग्रह लाभ की बड़ी आकांक्षा है। शुभे प्रज्ञा पारमिता स्वरूपा तारा तुम्हारी रक्षा करें। क्या तुम सद्धर्म की सेवा के लिए कुछ उत्सर्ग कर सकोगी? ये कहकर प्रपंच बुद्धि शांत हुआ और फिर कुछ सोचकर आगे बोला, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होने में विघ्न और विलंब है, इसीलिए तुम्हें आवश्यक धर्माचरण करना होगा। आर्य, मेरा भी एक स्वार्थ है, विजया ने कहा। क्या? राजकुमारी देवसेना का अंत, विजया बोली। जिस पर प्रपंच बुद्धि ने कहा, और मुझे उग्र तारा की साधना के लिए महाश्मशान में एक राज बलि चाहिए। भटार वफ ने तभी कहा, यह तो अच्छा सुयोग है। विजया बोली, उसे श्मशान तक ले जाना तो मेरा काम है, आगे मैं कुछ ना कर सकूंगी। प्रपंच बुद्धि ने कहा, सब हो जाएगा, उग्र तारा की कृपा से सब कुछ सुसंपन्न होगा। भटार वफ ने कहा, परंतु मैं कृतज्ञता से कलंकित होऊंगा, और स्कंद गुप्त से मैं किस मुंह से? नहीं नहीं। प्रपंच बुद्धि ने कहा, सावधान भटार्क, अलग ले जाकर इतना समझाया फिर भी तुम पहले अनंत देवी और पूर्व गुप्त से प्रतिश्रुति हो चुके हो। इस पर भटार वफ ने कहा, ओ पाप पंक में लिप्त मनुष्य की छुट्टी नहीं, कुकर्म उसे जकड़ कर अपने नागपाश में बांध लेता है, दुर्भाग्य। ये कहकर वहां से सबका प्रस्थान होता है। तभी मातृगुप्त ओट से निकलकर बाहर आते हैं और कहते हैं, भयानक कुचक्र, एक निर्मल कुसुम कली को कुचलने के लिए इतनी बड़ी प्रताड़ना की चक्की? मनुष्य, तुझे हिंसा का उतना ही लोभ है जितना एक भूखे भेड़िए को, तब भी तेरे पास उससे कुछ विशेष साधन है। छल, कपट, विश्वासघात, कृतज्ञता और पैने अस्त्र, इनसे भी बढ़कर प्राण लेने की कला कुशलता। देखा जाएगा भटार्क, तुम जाते कहां हो? ये कहकर मातृगुप्त भी वहां से चला जाता है। द्वितीय दृश्य, श्मशान में साधक रूप से प्रपंच बुद्धि बैठा है। दूर से तभी स्कंदगुप्त आता है। स्कंदगुप्त कहता है, इस साम्राज्य का बोझ किसके लिए? हृदय में अशांति, राज्य में अशांति, परिवार में अशांति, केवल मेरे अस्तित्व से? मालूम होता है कि सबकी, विश्व भर की शांति रजनी में मैं ही धूमकेतु हूं। यदि मैं ना होता तो यह संसार अपनी स्वाभाविक गति से, आनंद से चला करता। परंतु मेरा तो निज का कोई स्वार्थ नहीं, हृदय के एक एक कोने को छान डाला, कहीं भी कामना की वन्या नहीं, बलवती आशा की आंधी नहीं चल रही है। केवल गुप्त सम्राट के वंशधर होने की दयनीय दशा ने मुझे इस रहस्यपूर्ण क्रियाकलाप में संलग्न रखा है। कोई भी मेरे अंतःकरण का आलिंगन करके ना रो सकता है ना तो हंस सकता है। तब भी विजया, ओह, उसे स्मरण करके क्या होगा जिसे हमने सुख शर्वरी की संध्या तारा के समान पहले देखा। वही उल्का पिंड होकर दिगंत दाह करना चाहती है। विजया, तूने क्या किया? प्रपंच बुद्धि की ओर देखकर तभी वो आगे बोले, ओह, कैसा भयानक मनुष्य है, कैसी क्रूर आकृति है, मूर्तिमान पिशाच है ये। अच्छा, मातृगुप्त तो अभी तक नहीं आया, छिप कर देखता हूं। ये कहकर वो वहां छिप जाते हैं। विजया के साथ तभी देवसेना का प्रवेश होता है। देवसेना ने कहा, आज फिर तुम किस अभिप्राय से आई हो? विजया ने कहा, और तुम राजकुमारी, क्या तुम इस महाविभत्स शमशान में आने से नहीं डरती हो? संसार का मूक शिक्षक शमशान क्या डरने की वस्तु है? जीवन की नश्वरता के साथ ही सर्वात्मा के उत्थान का ऐसा सुंदर स्थल और कौन है? नेपथ्य से गान की तभी धुन सुनाई देती है, जिसके बोल होते हैं, सब जीवन बीता जाता है, धूप छांह के खेल सदृश सब, समय भागता है प्रतिक्षण में, नव अतीत के तुषार कण में, हमें लगाकर भविष्य रण में, आप कहां छिप जाता है सब, बुल्ले लहर हवा के झोंके, मेघ और बिजली के टोंके, किसका साहस है कुछ रोके, जीवन का वह नाता है सब, वंशी को बस बच जाने दो, मीठी मीणों को आने दो, आंखें बंद करके गाने दो, जो कुछ हमको आता है सब। विजया तभी स्वगत ही कहती है, भाव विभोर दूर की रागिनी सुनती हुई यह कुरंगी सी कुमारी, आह कैसा भोला मुखड़ा है। नहीं नहीं विजया, सावधान, प्रतिहिंसा। तभी प्रकट में वो देवसेना से कहती है, राजकुमारी देखो यह कोई बड़ा सिद्ध है, वहां तक चलोगी? देवसेना ने कहा, चलो, परंतु मुझे सिद्ध से क्या प्रयोजन, जब मेरी कामनाएं विस्मृति के नीचे दबा दी गई हैं, तब वह चाहे स्वयं ईश्वर ही हो तो क्या, तब भी एक कुतूहल है, चलो। इसके बाद विजया देवसेना को आगे कर प्रपंच बुद्धि के पास ले जाती है और आप हट जाती है। ध्यान से आंख खोलकर प्रपंच बुद्धि तभी उसे देखता है और पूछता है, तुम्हारा नाम देवसेना है? देवसेना आश्चर्य से कहती है, हां भगवान, तुमको देव सेवा के लिए शीघ्र प्रस्तुत होना होगा। तुम्हारी ललाट लिपि कह रही है कि तुम बड़ी भाग्यवती हो। कौन सी देव सेवा? देवसेना ने पूछा। यह नश्वर शरीर जिसका उपभोग तुम्हारा प्रेमी भी न कर सका और ना करने की आशा है, देव सेवा में अर्पित करो, उग्र तारा तुम्हारा परम मंगल करेगी। प्रपंच बुद्धि ने कहा। यह सुनकर देवसेना सिहर उठती है। क्या मुझे अपनी बलि देनी होगी? विजया, विजया, वो घूमकर देखती हुई बोली। प्रपंच बुद्धि ने तभी कहा, डरो मत, तुम्हारा सृजन इसीलिए था। नित्य की मोह ज्वाला में जलने से तो यही अच्छा है कि तुम एक साधक का उपकार करती हुई अपनी ज्वाला शांत कर दो। ये सुनकर देवसेना ने कहा, परंतु कापालिक, एक और भी आशा मेरे हृदय में है, वह पूर्ण नहीं हुई है। मैं डरती नहीं हूं, केवल उसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा है। विजया के स्थान को मैं कदापि न ग्रहण करूंगी, उसे भ्रम है, यदि वह छूट जाता। देवसेना बोल ही रही थी कि तभी प्रपंच बुद्धि बीच में ही उठकर उसका हाथ पकड़कर खड़ग उठाता है और कहता है, पर मुझे ठहरने का अवकाश नहीं, उग्र तारा की इच्छा पूर्ण हो। देवसेना ने कहा, प्रियतम मेरे देवता युवराज तुम्हारी जय हो। ये कहते हुए देवसेना सिर झुकाती है। तभी पीछे से मातृगुप्त आकर प्रपंच बुद्धि का हाथ पकड़कर नेपथ्य में ले जाता है। देवसेना तभी चकित होकर उपस्थित स्कंद गुप्त का आलिंगन करती है। तृतीय दृश्य, मगध के राज मंदिर में अनंत देवी, पूर्वगुप्त, विजया और भटारक। पूर्वगुप्त ने कहा, विजय पर विजय, देखता हूं कि एक बार वंशु तट पर गुप्त साम्राज्य की पताका फिर फहराएगी। गरुण ध्वज वंशु के रेतीले मैदान में अपनी स्वर्ण प्रभा का विस्तार करेगा। अनंत देवी ने कहा, परंतु तुमको क्या, निर्वीर्य निरीह बालक, तुम्हें भी इसकी प्रसन्नता है? लज्जा के गर्त में डूब नहीं जाते और भी छाती फुलाकर इसका आनंद मानते हो? विजया ने कहा, आहा, यदि आज राजा धीराज कहकर युवराज पूर्वगुप्त का अभिनंदन कर सकती। भटार वफ ने कहा, यदि मैं जीता रहा तो वह भी कर दिखाऊंगा। तभी दवारिक का प्रवेश होता है। वो कहता है, जय हो, एक चर आया है, ले आओ। भटार वफ ने कहा, जिसके बाद दवारिक जाकर चर को लिवा लाता है। चर कहता है, युवराज की जय हो। भटार वफ कहता है, तुम कहां से आए हो? चर ने कहा, नगर हार के हुण स्कंधावार से। क्या संदेश है? भटार वफ ने कहा, जिस पर चर ने कहा, सेनापति खिंगिल ने पूछा है कि मगध की गुप्त परिषद क्या कर रही है। उसने प्रचुर अर्थ लेकर भी मुझे ठीक समय पर धोखा दिया है, परंतु स्मरण रहे कि अब की बार हमारा अभियान सीधे कुसुमपुर पर होगा। स्कंदगुप्त का साम्राज्य ध्वंस तो पीछे होगा, पहले कुसुमपुरी का मणि रत्न भंडार लूटा जाएगा। प्रतिष्ठान और चरणाद्री तथा गोपाद्री के दुर्गपतियों को विद्रोह करने के लिए धन परिषद की आज्ञा से भेजा गया था, उसका क्या फल हुआ? अंतर्वेद के विषयपति की कुटिल दृष्टि ने उस रहस्य का उद्घाटन करते हुए वह धन भी आत्मसात कर लिया और सहायता के बदले हम लोग प्रवंचित हुए, जिससे हूणों को सिंधु का तट भी छोड़ देना पड़ा। इस पर भटार वफ ने कहा, ओ, शर्वनाग ने बड़ी सावधानी से काम लिया। आचार्य प्रपंच बुद्धि का निधन होने से यह सब दुर्घटना हुई है। दूत, हूण राज से कहना कि पूर्वगुप्त को सम्राट बनाने में तुम्हें अवश्य सहायता करनी पड़ेगी। चर ने कहा, परंतु उन्हें विश्वास कैसे हो? इस पर भटार वफ ने कहा, मैं प्रमाण पत्र दूंगा। हूणों को एक बार ही भारतीय सीमा से दूर करने के लिए स्कंदगुप्त ने समस्त सामंतों को आमंत्रण दिया है। मगध की रक्षक सेना भी उसमें सम्मिलित होगी और मैं ही उसका परिचालन करूंगा। वहीं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा और यह लो प्रमाण पत्र। ये कहकर भटार वफ उसे पत्र लिखकर देता है। पूर्वगुप्त तभी कहता है, ठहरो। अनंत देवी बोली, चुप रहो। दूत ने तभी कहा, तो यह उपहार भी साम्राज्ञी के लिए प्रस्तुत है। इसके बाद वो रत्नों से भरी हुई मंजूषा देता है। भटार वफ कहता है, और उत्तरापद के समस्त धर्म संघों के लिए क्या किया है? दूत ने कहा, आर्य महाश्रमण के पास मैं हो आया हूं। समस्त सद्धर्म अनुयायी और संघ स्कंदगुप्त के विरुद्ध हैं। यागिक क्रियाओं की प्रचुरता से उनका हृदय धर्मनाश के भय से घबरा उठा है। वे सब विद्रोह करने के लिए उत्सुक हैं। भटार वफ ने कहा, अच्छा जाओ, नगर हार के गिरी व्रज का युद्ध इसका निपटारा करेगा। हूण राज से कहना कि सावधान रहें, शीघ्र वहीं मिलूंगा। ये सुनकर दूत प्रणाम करके वहां से चला जाता है। पूर्वगुप्त ने तभी कहा, यह क्या हो रहा है? अनंत देवी बोली, तुम्हारे सिंहासन पर बैठने की प्रस्तावना है। तभी सैनिक का प्रवेश होता है। महादेवी की जय हो, सैनिक ने कहा। भटावर्फ ने तभी कहा, क्या है?
कुसुमपुर की सेना जालंधर से भी आगे बढ़ चुकी है। साम्राज्य के स्कंधावार में शीघ्र ही पहुंच जाने की संभावना है, सैनिक ने कहा। जिस पर पुरगुप्त बोला, विजया बहुत विलंब हुआ। एक पात्र वो बोल ही रहा होता है कि तभी अनंत देवी संकेत करती हैं, जिससे विजया उसे वो पात्र पिलाती है। भटारवव तभी कहता है, मेरे अश्वों की व्यवस्था ठीक है ना, मैं उसके पहले पहुंचूंगा। परंतु महाबलाधिकृत, सैनिक ने कहा। क्या कहो, भटारवव ने कहा। यह राष्ट्र का आपत्ति काल है। युद्ध की आयोजनाओं के बदले हम कुसुमपुर में आपानकों का समारोह देख रहे हैं। राजधानी विलासिता का केंद्र बन रही है। यहां मनुष्यों के लिए विलास के उपकरण बिखरे रहने पर भी अपर्याप्त हैं। नए नए साधन और नवीन कल्पनाओं से भी इस विलासिता राक्षसी का पेट नहीं भर रहा है। भला मगध के विलासी सैनिक क्या करेंगे, सैनिक ने कहा। जिस पर भटारवव बोला, अबोध, जो विलासी ना होगा वह भी क्या वीर हो सकता है? जिस जाति में जीवन ना होगा वह विलास क्या करेगी? जागृत राष्ट्र में ही विलास और कलाओं का आदर होता है। वीर एक कान से तलवारों की और दूसरे से नुपुरों की झनकार सुनते हैं। तभी विजया बोली, बात तो यही है, आप महाबलाधिकृत हैं, इसीलिए मैं कुछ न कहूंगा, सैनिक ने कहा। नहीं तो, भटारवव ने पूछा, यदि दूसरा कोई ऐसा कहता तो मैं यहीं उससे कहता कि तुम देश के शत्रु हो, सैनिक ने कहा। जिस पर भटारवव ने क्रोध दिखाते हुए कहा, हैं? हां, यवनों से उधार ली हुई सभ्यता नाम की विलासिता के पीछे आर्य जाति उसी तरह पड़ी है जैसे कुलवधु को छोड़कर कोई नागरिक वैश्या के चरणों में। देश पर बर्बर हूणों की चढ़ाई और तिस पर भी यह निर्लज्ज आमोद। जातीय जीवन के निर्वाणोन्मुख प्रदीप का यह दृश्य है। आह, जिस मगध देश की सेना सदैव नासिर में रहती थी, आर्य चंद्रगुप्त की वही विजयनी सेना सबके पीछे निमंत्रण आने पर साम्राज्य सेना में जाए। महाबलाधिकृत, मेरी तो इच्छा होती है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैं उस सेना का नायक हूं जिस पर गरुण ध्वज की रक्षा का भार रहता था, भटारवव ने तभी अपने क्रोध के मनोभाव को दबाकर कहा। अच्छा, तुम यहीं मगध की रक्षा करना, मैं जाता हूं। यह सुनकर सैनिक कहता है, अच्छा तो यह खड़ग लीजिए, मैं आज से मगध की सेना का नायक नहीं। यह कहकर वो खड़ग रख देता है। पुरगुप्त तभी मद्यप किसी चेष्टा बनाकर कहता है, यह अच्छा किया, आओ मित्र, हम तुम कादंब पिए, जाने दो इन्हें लड़ने दो। अनंत देवी तभी भटार को संकेत करती हुई उठती है और विजया से कहती है, विजया, युवराज का मन बहलाओ। सैनिक तिरस्कार की दृष्टि से देखते हुए वहां से चला जाता है। भटार्क और अनंत देवी एक ओर, विजया और पुरगुप्त दूसरी ओर जाते हैं। चतुर्थ दृश्य, अवंती उपवन में जयमाला और देवसेना। देवसेना, जयमाला ने कहा, तू उदास है कि प्रसन्न, कुछ समझ में नहीं आता। जब तू गाती है तो मेरे भीतर की रागिनी रोती है, और जब हंसती है तब जैसे विषाद कर प्रस्तावना होती है। पहली सखी ने कहा, सम्राट युद्ध यात्रा में गए हैं। और इस पर दूसरी ने कहा, तो क्या? देवसेना बोली, तुम सब भी भाभी के साथ मिल गई हो। क्यों भाभी, गाऊं वह गीत? जयमाला बोली, मेरी प्यारी, तू गाती है, आहा, बड़ी बड़ी आंखें तो बरसाती ताल सी लहरा रही हैं, तू दुखी होती है, ले मैं जाती हूं, अरे तुम सब इसे हंसाओ। ये कहकर जयमाला वहां से चली जाती है। देवसेना बोली, क्या महारथी हार कर भागे? अब तुम सब क्षुद्र सैनिकों की पारी है। अच्छा तो आओ। पहली सखी ने कहा, नहीं राजकुमारी, मैं पूछती हूं कि सम्राट ने तुमसे कभी प्रार्थना की थी? दूसरी ने कहा, हां तभी तो प्रेम का सुख है। तीसरी सखी बोली, तो क्या मेरी राजकुमारी स्वयं प्रार्थनी होंगी? देवसेना बोली, प्रार्थना किसने की है यह रहस्य की बात है। क्यों कहूं, प्रार्थना हुई मालव की ओर से। लोग कहेंगे कि मालव देकर देवसेना का ब्याह किया जा रहा है। इस पर पहली सखी ने कहा, न कहो, तब फिर क्या, हरी हरी कोपलों की पट्टी में फूल खिल रहा है और क्या। देवसेना बोली, तेरा मुंह काला और क्या, निर्दय होकर आघात मत कर, मर्म बड़ा कोमल है, कोई दूसरी हंसी तुझे नहीं आती। ये कहकर उसने मुंह फेर लिया। दूसरी सखी बोली, लक्ष्य भेद ठीक हुआ सा देखती हूं। यह सुनकर देवसेना ने कहा, क्यों घाव पर नमक छिड़कती है, मैंने कभी उनसे प्रेम की चर्चा करके उनका अपमान नहीं होने दिया। नीरव जीवन और एकांत व्याकुलता का चोटने का सुख मिलता है। जब हृदय में रुदन का स्वर उठता है तभी संगीत की वीणा मिला लेती हूं, उसी में सब छिप जाता है। देवसेना की आंखों से आंसू बहता है। तीसरी सखी ने कहा, क्या तुम रोती हो, मेरा अपराध क्षमा करो। देवसेना सिसकती हुई कहती है, नहीं प्यारी सखी, आज ही मैं प्रेम के नाम पर जी खोल कर रोती हूं, बस फिर नहीं। यह एक क्षण का रुदन अनंत स्वर्ग का सृजन करेगा। दूसरी सखी ने कहा, तुम्हें इतना दुख है, मैं यह कल्पना भी न कर सकी थी। इस पर देवसेना ने संभल कर कहा, यही तो भूलती है, मुझे तो इसी में सुख मिलता है। मेरा हृदय मुझसे अनुरोध करता है, मचलता है, रूठता है, मैं उसे मनाती हूं। आंखें प्रणय कलह उत्पन्न कराती हैं, चित्त उत्तेजित करता है, बुद्धि झिड़कती है, कान कुछ सुनते ही नहीं। मैं सबको समझाती हूं, विवाद मिटाती हूं, सखी फिर भी मैं इसी झगड़ालू कुटुंब में गृहस्थी संभालकर स्वस्थ होकर बैठती हूं। तीसरी सखी ने कहा, आश्चर्य राजकुमारी, तुम्हारे हृदय में एक बरसाती नदी वेग से भरी है। देवसेना बोली, कूलों में उफन कर बहने वाली नदी, तुमुल तरंग, प्रचंड पवन और भयानक वर्षा, परंतु उसमें भी नाव चलानी ही होगी। पहली सखी गाती है, मांझी साहस है खेलोगे, जर जर तरी भरी पथिकों से झड़ में क्या खेलोगे, अलस नील घन की छाया में, जल जालों की छल माया में अपना बल तौलोगे, अनजाने तट की मदमाती लहरें क्षितिज चूमती आती, ये झटके क्या झेलोगे मांझी। तभी भीम वर्मा का प्रवेश होता है। वो कहता है, बहन शक मंडल से विजय का समाचार आया है। भगवान की दया है, देवसेना ने कहा, परंतु महाराज पुत्र गोविंद गुप्त वीर गति को प्राप्त हुए, यह बड़ा। भीम वर्मा की बात को बीच में काटते हुए देवसेना ने कहा, वे धन्य हैं। इस पर भीम वर्मा बोले, वीर शैया पर सोते सोते उन्होंने अनुरोध किया कि महाराज बंधु वर्मा गुप्त साम्राज्य के महाबलाधिकृत बनाए जाएं, इसीलिए अभी वे स्कंधावार में ठहरेंगे, उनका आना अभी नहीं हो सकता। और भी कुछ सुना है देवसेना? क्या, देवसेना ने पूछा, सम्राट ने तुम्हें बचाने का पुरस्कार स्वरूप मातृगुप्त को कश्मीर का शासक बना दिया है। गांधार वंशी राजा अब वहां नहीं है, कश्मीर अब साम्राज्य के अंतर्गत हो गया है। भीम वर्मा ने कहा, सम्राट की महानुभावता है भाई, मेरे प्राणों का इतना मूल्य। देवसेना बोली, आर्य साम्राज्य का उद्धार हुआ है बहन, सिंधु के प्रदेश से मलेच्छ राज्य ध्वस्त हो गया है, प्रवीर सम्राट स्कंद गुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है, गौ ब्राह्मण और देवताओं की ओर कोई भी आताताई आंख उठाकर नहीं देखता, लौहित्य से सिंधु तक हिमालय की कंदराओं में भी स्वच्छंदता पूर्वक समागम होने लगा है, सामगान होने लगा है। धन्य हैं हम लोग जो इस दृश्य को देखने के लिए जीवित हैं। भीम वर्मा ने कहा, मंगलमय भगवान सब मंगल करेंगे। भाई साहस चाहिए, कोई वस्तु असंभव नहीं। देवसेना बोली, उत्तरापद के सुशासन की व्यवस्था करके परम भट्टारक शीघ्र आवेंगे। मुझे अभी स्नान करना है, जाता हूँ। भाई तुम अपने शरीर के लिए बड़े ही निश्चिंत रहते हो और कामों के लिए तो। देवसेना की ये बात सुनते ही भीम हंसता हुआ वहां से चला जाता है। तभी मुद्गल का प्रवेश होता है। मुद्गल कहता है, जो है सो काराम से करके, यह तो अपने से नहीं हो सकता। जब कोई ना मिला तो फूटे ढोल की तरह मेरे गले पड़ी। क्या है मुद्गल? देवसेना ने पूछा। वही वही, सीता की सखी मंदोदरी की नानी त्रिजटा। कहाँ है मातृगुप्त, ज्योतिषी की दुम। अपने को कवि भी लगाता था, मेरी कुंडली मिलाई या कि मुझे मिट्टी में मिलाया। शाप दूंगा, एक शाप, दांत पीस कर हाथ उठाकर शिखा खोलते हुए चाणक्य का लकड़ दादा बन जाऊंगा। मुझे इस झंझट में फंसा दिया, उसने क्यों मेरा ब्याह कराया? मुद्गल ने कहा, तो क्या बुरा किया? देवसेना ने पूछा। झक मारा, जो है सो काराम से करके। अरे ब्याह भी तुम्हारा होता, न होता तो क्या इससे भी बुरा रहता? मुद्गल ने कहा, बाबा अब तो मैं इस पर भी प्रस्तुत हूं कि कोई उसको फेर ले, परंतु यह हत्या कौन अपने पल्ले बांधेगा? मुद्गल की यह बात सुनकर सब हंसते हैं। देवसेना तभी बोली, आज कौन सी तिथि है, एकादशी तो नहीं? मुद्गल ने कहा, हाँ, यजमान के घर एकादशी और मेरे पारण की द्वादशी, क्योंकि ठीक मध्यान्ह में एकादशी के ऊपर द्वादशी चढ़ बैठती है। चढ़ बैठती है, उसका गला दबा देती है, पेट पचकने लगता है। देवसेना बोली, अच्छा आज तुम्हारा निमंत्रण है तुम्हारी स्त्री के साथ। ये सुनकर मुद्गल बोला, जो है सो देवता प्रसन्न हो, आपका कल्याण हो। फिर शीघ्रता होनी चाहिए, पुण्यकाल बीत ना जाए। चलिए मैं उसे बुला लेता हूं। ये कहते हुए वो वहां से जाता है, जिसके उपरांत सबका प्रस्थान होता है। पंचम दृश्य, गांधार की घाटी रण क्षेत्र में। तुरही बजती है, स्कंद गुप्त और बंधु वर्मा के साथ सैनिकों का प्रवेश होता है। बंधु वर्मा कहता है, वीरों तुम्हारी विश्व विजयनी वीर गाथा सुंदर सुंदरियों की वीणा के साथ मंद ध्वनि से नंदन में गूंज उठेगी। असीम साहसी आर्य सैनिक, तुम्हारे शस्त्र ने बर्बर हूणों को बता दिया है कि रण विद्या केवल निशंसता नहीं है। जिनके आतंक से आज विश्व विख्यात रूम साम्राज्य पदाक्रांत है, उन्हें तुम्हारा लोहा मानना होगा और तुम्हारे पैरों के नीचे दबे हुए कंठ से उन्हें स्वीकार करना होगा कि भारतीय दुर्जेय वीर हैं। समझ लो, आज के युद्ध में प्रत्यावर्तन नहीं है, जिसे लौटना हो अभी से लौट जाए। इस पर एक सैनिक ने कहा, आर्य सैनिकों का अपमान करने का अधिकार महाबलाधिकृत को भी नहीं है, हम सब प्राण देने आए हैं, खेलने नहीं। स्कंदगुप्त बोले, साधु तुम यथार्थ ही जननी जन्मभूमि की संतान हो। सैनिक ने कहा, राजाधिराज श्री स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की जय। तभी चर का प्रवेश होता है, वो कहता है, परम भट्टारक की जय हो। स्कंदगुप्त ने कहा, क्या समाचार है? चर बोला, देव हूण शीघ्र ही नदी पार होकर आक्रमण को प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु यदि आक्रमण ना हुआ तो स्वयं आक्रमण करेंगे। बंधु वर्मा ने कहा, और कुंभा के रण क्षेत्र का क्या समाचार है? मगध की सेना पर विश्वास करने के लिए मैं ना कहूंगा, भटार की दृष्टि में पिशाच की मंत्रणा चल रही है, खिंगिल के दूत भी आ जा रहे हैं, चक्रपालित उस कूट चक्र को तोड़ सकेंगे या नहीं, इसमें संदेह है। स्कंदगुप्त बोले, बंधु वर्मा, तुम कुंभा के रण क्षेत्र की ओर जाओ, मैं यहां देख लूंगा। बंधु वर्मा ने कहा, राजाधिराज, मगध की सेना पर अधिकार रखना मेरे सामर्थ्य के बाहर होगा, और मालव की सेना आज नासिर में है। आज इस नदी की तीक्ष्ण धारा को लाल करके बहा देने की मेरी प्रतिज्ञा है। आज मालव का एक भी सैनिक नासी सेना से ना हटेगा। बंधु, यह यश मुझसे मत छीन लो, स्कंदगुप्त ने कहा। जिस पर बंधु वर्मा बोले, परंतु सबके प्राण देने के स्थान भिन्न हैं। यहां मालव की सेना मरेगी, दूसरे को यहां मारकर अधिकार जमाने का अधिकार नहीं है, और बंधु वर्मा मरने मारने में जितना पटु है उतना षड्यंत्र में नहीं। आपके रहने से 100 बंधु वर्मा उत्पन्न होंगे, आप शीघ्रता कीजिए। स्कंदगुप्त बोले, बंधु वर्मा, तुम बड़े कठोर हो, शीघ्रता कीजिए। यहां हूणों को रोकना मेरा ही कर्तव्य है, उसे मैं ही करूंगा। महाबलाधिकृत का अधिकार मैं ना छोड़ूंगा। चक्रपालित वीर है, परंतु अभी वह नवयुवक है, आपका वहां पहुंचना आवश्यक है। भटारक पर विश्वास ना कीजिए, बंधु वर्मा ने कहा। जिस पर स्कंदगुप्त बोले, मैंने समझा कि हूणों के सम्मुख वह विश्वासघात न करेगा। बंधु वर्मा बोले, ओह, जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन कोई भी इधर आंख उठाकर नहीं देखेगा। सम्राट, शीघ्रता कीजिए। बंधु वर्मा की यह बात सुनकर स्कंदगुप्त उसका आलिंगन करता है और कहता है, मालवेश की जय। बंधु वर्मा कहता है, महाराजा धिराज श्री स्कंदगुप्त की जय। इसके बाद चर के साथ स्कंदगुप्त वहां से जाते हैं। नेपथ्य में रणवाद्य, शत्रु सेना आती है, हूणों की सेना से विकट युद्ध होता है, हूणों को मरना, घायल होकर भागना पड़ता है। बंधु वर्मा की भी अंतिम अवस्था आती है, वह गरुण ध्वज टेक कर उसे चूमता है और दम तोड़ते हुए कहता है, विजय, तुम्हारी विजय, आर्य साम्राज्य की जय। इस पर सभी बोले, आर्य साम्राज्य की जय। बंधु वर्मा बोले, भाई, स्कंदगुप्त से कहना कि मालव वीर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, भीम और देवसेना उनकी शरण है। सैनिक बोला, महाराज, आप क्या कहते हैं? सब शोक करते हैं। बंधु वर्मा कहते हैं, बंधुगण, यह रोने का नहीं, आनंद का समय है। कौन वीर इस तरह जन्मभूमि की रक्षा में प्राण देता है, यही मैं ऊपर से देखने जाता हूं। महाराज, बंधु वर्मा की जय, एक सैनिक ने कहा। जिसके बाद गरुण ध्वज की छाया में बंधु वर्मा की मृत्यु हो जाती है। षष्ठ दृश्य, दुर्ग वेफ सम्मुख वुफभा का रण क्षेत्र। चक्रपालित कहता है, सम्राट, प्रतारणा की पराकाष्ठा, 2 दिन से जानबूझकर शत्रु को उस पहाड़ी पर जमने का अवकाश दिया जा रहा है। आक्रमण करने से मैं रोका जा रहा हूं, समस्त मगध की सेना उसके संकेत पर चल रही है। ये सुनकर स्कंदगुप्त बोले, चक्र, कुंभा में जल बहुत कम है, आज ही उतरना होगा, तुम्हें दुर्ग में रहना चाहिए। मैं भटारक पर विश्वास तो करता ही नहीं, परंतु उस पर प्रकट रूप से अविश्वास का भी समय नहीं रहा। नहीं सम्राट, उसे बंदी कीजिए, वह देखिए वो आ रहा है, चक्रपालित ने कहा। तभी भटार वफ का प्रवेश होता है। राजाधिराज की जय हो, स्कंदगुप्त ने कहा। क्यों सेनापति, यह क्या हो रहा है? आक्रमण की प्रतीक्षा सम्राट, भटारक ने कहा। या समय की, स्कंदगुप्त ने कहा। सम्राट का मुझ पर विश्वास नहीं है यह? तभी चक्रपालित बोला, विश्वास तो कहीं से क्रय नहीं किया जाता। तुम अभी बालक हो, भटार वफ ने कहा। चक्रपालित बोला, दुराचारी, कृतघ्न, अभी मैं तेरा कलेजा फाड़ कर खाता हूं। सावधान, भटारवफ ने कहा, अब मैं सहन नहीं कर सकता। यह कहकर वह तलवार पर हाथ रखता है। स्कंदगुप्त तभी बोले, भटार के यह बालक है, कूट मंत्रणा वाक चातुरी नहीं जानता, चुप रहो चक्र। चक्रपालित और भटारक सिर नीचा कर लेते हैं। तभी स्कंदगुप्त आगे कहते हैं, भटारक प्रवंचना का समय नहीं है, स्मरण रखना कृतघ्न और नीचों की श्रेणी में तुम्हारा नाम पहले रहेगा। भटारक चुप रह जाता है। स्कंदगुप्त आगे कहते हैं, युद्ध के लिए प्रस्तुत हो, मेरा खड़ग साम्राज्य की सेवा करेगा। भटारवफ ने कहा, अच्छा तो अपनी सेना लेकर तुम गिर सिंकट पर पीछे से आक्रमण करो और सामने से मैं आता हूं। चक्र तुम दुर्ग की रक्षा करो। जैसी आज्ञा, भटारवफ ने कहा। नगर हार के स्कंधावार को भी सहायता के लिए कहला दिया जाए तो अच्छा होगा। इस पर स्कंदगुप्त बोले, चर गया है, तुम शीघ्र जाओ, देखो सामने शत्रु दिख पड़ते हैं। इसके बाद भटार का प्रस्थान होता है। चक्रपालित कहते हैं, तो मैं बैठा रहूं? भविष्य अच्छा नहीं है चक्र, नगर हार से समय पर सहायता पहुंचती नहीं दिखाई देती, परंतु यदि आवश्यकता हो तो शीघ्र नगर हार की ओर प्रत्यांचना करना, मैं वहीं तुमसे मिलूंगा। स्कंदगुप्त ने कहा। तभी चर का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त ने उससे पूछा, गांधार युद्ध का क्या समाचार है? चर ने कहा, विजय, उस रण क्षेत्र में हूण नहीं रह गए, परंतु सम्राट बंधु वर्मा नहीं रहे। आह बंधु, तुम चले गए, धन्य हो वीर हृदय। स्कंदगुप्त यह कहते हुए शोक से बैठ जाता है। चक्रपालित कहता है, इसका समय नहीं है सम्राट, उठिए, सेना आ रही है, इस समय यह समाचार नहीं प्रचारित करना है। स्कंदगुप्त ने उठते हुए कहा, ठीक कहा। तभी भटार के साथ सेना का प्रवेश होता है। स्कंदगुप्त बोले, देखो कुंभा के उस बंध से सावधान रहना, आक्रमण में यदि असफलता हो और शत्रु की दूसरी सेना कुंभा को पार करना चाहे तो उसे काट देना। देखो भटारक, तुम्हारे विश्वास का यही प्रमाण है। जैसी आपकी आज्ञा, भटार वफ ने कहा, और फिर कुछ सैनिकों के साथ वो वहां से चला जाता है। स्कंदगुप्त आगे बोले, चक्र दुर्ग रक्षक सैनिकों को लेकर तुम प्रतीक्षा करना, हम इसी छोटी सी सेना से आक्रमण करेंगे, तुम सावधान रहना। देखो हूण आ रहे हैं, उन्हें वहीं रोकना होगा, नेपथ्य में रणवाद्य होता है। चक्रपालित कहते हैं, जैसी आज्ञा। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। स्कंदगुप्त तभी कहते हैं, वीर मगध सैनिकों, आज स्कंदगुप्त तुम्हारी परिचालना कर रहा है, यह ध्यान रहे, गरुण ध्वज का मान रहे, भले ही प्राण जाए। समय सेना ने कहा, राजाधिराज श्री स्कंदगुप्त की जय। इसके बाद सेना बढ़ती है, ऊपर अस्त्र वर्षा होती है, घोर युद्ध के बाद हूण भागते हैं, साम्राज्य सेना का जयनाद करते हुए तभी शिखर पर अधिकार करते हैं। नायक ऊपर देखता हुआ कहता है, सम्राट आश्चर्य है, भागी हुई हूण सेना कुंभा के उस पार उतर जाना चाहती है। इस पर स्कंदगुप्त बोले, क्या कहा? नायक बोला, कुछ मगध सेना भी वहां है, परंतु वह तो जैसे उनका स्वागत कर रही है। विश्वासघात, प्रतारणा, नीच भटारक, स्कंदगुप्त बोले। नायक ने कहा, फिर क्या आज्ञा है? स्कंदगुप्त बोले, दुर्ग की रक्षा होनी चाहिए, उस पार की हूण सेना यदि आ गई तो कृतघ्न भटारक उन्हें मार्ग बतावेगा, वीरों शीघ्र उन्हें उसी पार रोकना होगा, अभी कुंभा पार होने की संभावना है। यह सुनकर नायक तुरही बजाता है और सारे सैनिक इकट्ठे होते हैं। स्कंदगुप्त उनको घबराहट से देखते हुए कहते हैं, शीघ्रता करो। नायक ने कहा, क्या? स्कंदगुप्त बोले, नीच भटारक ने बांध तोड़ दिया है, कुंभा में जल बड़े वेग से बढ़ रहा है, चलो शीघ्र। सब उतरना चाहते हैं। कुंभा में अकस्मात जल बढ़ जाता है, सब बहते हुए दिखाई देते हैं।
ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।